તારીખ 26/8/1998 શ્રી મદરાજચંદ્ર પત્રાંક 40 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 693.
હિતેન્દ્રિયતા ઇતને ગુણ જિસ આત્મા મેં હો વહ તત્વ પાને કે લિયે ઉત્તમ પાત્ર હૈ. पात्रता के लक्षण लिखे हैं. पात्रता के अनेक लक्षण हैं, इसमें ये मुख्य लक्षण है. यानी ऐसे परिणाम और ऐसी योग्यता जिस आत्मा में होती है वो उत्तम पात्र बोला जाता है. तत्व पाने के लिए, तत्व मैंने आत्म तत्व पाना, मैंने अनुभव करना. आत्मा का अनुभव करने के लिए ये अच्छा पात्र है, अच्छी योग्यता वाला जीव है, जिसमें ये चार प्रकार के भावों की योग्यता हो. इसमें पहला लिया है विशाल बुद्धि. विशाल बुद्धि किसको कहते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको सूक्ष्म यानी बुद्धि अधिक हो उसको विशाल बुद्धि कहते हैं, वो बात नहीं है. उधर विशालता माने संकुचितता का प्रतिपक्ष वाला परिणाम, जिसमें संकुचितता का अभाव हो उसको कहते हैं विशालता. संकुचितता किस किस तरह से आती है? संप्रदाय बुद्धि से संकुचितता आती है. हमारे संप्रदाय में तो ऐसा चलता है, या हमारे वाले में तो ऐसा चलता है. जैसे जैन धर्म के नाम से अनेक संप्रदाय चलते हैं, और एक एक संप्रदाय में भी अनेक प्रकार की पद्धतियां अलग अलग है, रूढ़ी अलग अलग है. जैसे हम दिगंबर संप्रदाय की मान्यता वाले बोले जाते हैं, फिर भी ऐसे कहेंगे कि कांजी स्वामी वाले ऐसे हैं और मूल दिगंबर वैसे हैं, हो गया ना अलग. वो एक संप्रदाय हो गया. ऐसे तो तीर्थंकर के नाम के अलावा दूसरा संप्रदाय नहीं होना चाहिए, फिर भी जब जब कोई योग युग पुरुष होता है तब उनके नाम से लोग संप्रदाय बना लेते हैं. बाकी तीर्थंकर देव को छोड़ करके किसी के नाम से कुछ चलना उचित नहीं है. वही परम गुरु है, सर्वज्ञ सर्वज्ञ देव है, वही परम गुरु है. बाकी के जो होते हैं पुण्यवंत होते हैं, तो उनके पुण्य के कारण से समझो, या लोगों की नासमझ के कारण से समझो, संप्रदाय चल जाता है. भूतकाल में भी ऐसा बना है और वर्तमान में भी ऐसा ही बनता है. जैसे मुनि सुव्रतन भगवान के काल में रामचंद्र जी युग पुरुष हुए, बड़े युग पुरुष थे, महात्मा थे, और मोक्ष में भी पधारे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन लोगों ने इसके नाम से एक नया संप्रदाय खड़ा कर दिया. ऐसे श्री कृष्ण हुए, वो भी महापुरुष थे, इनके नाम से एक और संप्रदाय चल गया। ऐसे कोई भी प्रभावक पुरुष होते हैं, उनके नाम से नया संप्रदाय चालू हो जाता है। कहीं हमें गुरुदेव के नाम से कोई नया संप्रदाय नहीं चलाए, वो हमको हमारी जागृति से देखना है। वो भी एक युग पुरुष थे, गुरुदेव भी एक प्रभावक बड़े महापुरुष युग पुरुष हो गए, लेकिन हम कांजे स्वामी वाले, हम श्रीमद राजचंद्र वाले, हाँ, हो गया संप्रदाय। जबकि कृपालु देव ने तो बहुत स्पष्ट कहा कि मैं कोई गच्छ में नहीं, मत में नहीं, वाड़ा में नहीं, संप्रदाय में नहीं, फिर भी लोग समझते नहीं तो उनके नाम से संप्रदाय बना लेते हैं। और गुरुदेव का तो जीवंत उदाहरण था, वो तो संप्रदाय तोड़ के बाहर निकल गए थे, संप्रदाय छोड़ के निकल चुके थे वो तो। फिर भी अगर हम नहीं समझते हैं तो इनके नाम से हमारी तो यही हमारी पद्धति ये है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ तो वैसा ही होता है, दूसरा नहीं चल सकता है, बात खत्म। ये संकुचितता के कारण से होता है। ज्ञानी तो तत्व को देखते हैं, ज्ञानी तो तत्व को देखते हैं, उनकी वो तत्व दृष्टि होते हैं, तो तत्व दृष्टि में विशालता आती है, तत्व दृष्टि के अभाव में संकुचितता होती है। जैसे गुरुदेव का दृष्टांत ले, तो आनंद घन जी के पद दोहराते थे, नरसिंह मेहता के पद दोहराते थे, हाँ, यहां लगी आत्मा तत्व चिन्हो नहीं, क्या लगी साधना सर्व झूठी, हूं करूं हूं करूं ये जो ज्ञानता शकटनो भार जेम स्वानताने, बता पद बोलता था गुरुदेव। और कृपालु देव ने तो 187 पत्र में भोजा भगत निरात कोड़ी ऐसे मार्गानुसारी और कणबी कोड़ी नात्मा और कबीर मीराबाई नरसिंह मेहता सबको मार्गानुसारी करके बहुत भक्ति किया है। ये इनकी विशालता है, क्या है, यही बुद्धि की विशालता है कि जहां तत्व है वहां से वो उठाते हैं, और जो तत्व है वो मूल तीर्थंकर देव से निकली हुई चीज है। क्या, तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि में जो मूल तत्व आया, वो तत्व कहीं भी हो ज्ञानी की नजर में वो आता है। और उतनी विशालता पात्रता के काल में मुमुक्षु की भूमिका में आ जाती है, ऐसा कहते हैं। या तो ज्ञानी को तो होती है, मुमुक्षु को भी होती है, ऐसी बात है। दिखाएंगे विशाल बुद्धि, मध्यस्था, सरलता, जितेंद्रियता, इतने गुण जिस आत्मा में हो वह तत्व पाने के लिए उत्तम पात्र है। तो पात्र मैंने पात्रता वाला है, उत्तम पात्रता आपका लक्षण दिया है, तो बात तो मुमुक्षु की हुई, हुई कि नहीं हुई, और वही चलेगी बात, तो बात तो वही चलेगी, मुमुक्षु की चलेगी अभी आगे भी। अगर ये तीर्थंकर देव का तत्व होने के बावजूद भी हम उसका आदर नहीं करते, तो तीर्थंकर देव के तत्व का अनादर अज्ञानता से हो जाता है। बात ऐसी है कुछ, क्योंकि विशालता एक गुण लिया है, चार गुण में से एक सद्गुण लिया है, पर संकुचितता है वो अवगुण है, अगर सद्गुण नहीं प्रकट हुआ तो अवगुण के कारण से दोष हो ही जाएगा। अवगुण को हो या दोष को हो एक ही बात है, दोष का दूसरा नाम अवगुण है, गुण विरुद्धता उसको कहते हैं अवगुण। तो ये तीर्थंकर देव का तत्व है, वो ज्ञानी उसका आदर करते हैं, मुमुक्षु सही मुमुक्षु यथार्थ समझ वाला मुमुक्षु इसका आदर करते हैं, और आदर नहीं करे तो अनादर हो ही जाएगा। बात तो रही तत्व की, नाम से भड़कने की जरूरत नहीं, नाम से भड़कने की कोई जरूरत नहीं। जैसे 131 पत्र में शंकराचार्य का श्लोक उद्धरण किया है कि एक घड़ी का भी यथार्थ सत्संग मिले तो वो जीवन को तारने के लिए नौका बराबर होता है। नाम दिया शंकराचार्य जी का, तो वो बात मूल तो तीर्थंकर देव की है, वर्तमान में इसके नाम से प्रसिद्ध हो या किसी के नाम से प्रसिद्ध हो इसकी कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। चीज क्या है वो देखने की बात है। एक सौ इकतीस वन भवती भवार्णवे नौका ऐसा करके लिखा है। एक सौ बत्तीस क्षणमपि सज्जन संगति ही एका भवती भवार्णवे नौका। एक क्षण का, एक घड़ी का नहीं, एक क्षण का भी जो सत्संग है, सत्पुरुष का क्षण भर का भी समागम है, संसार रूपी समुद्र तरने के लिए नौका रूप होता है। यह वाक्य महात्मा शंकराचार्य जी का है और यह यथार्थ ही लगता है। शंकराचार्य जी का है इसलिए यथार्थ नहीं है, ऐसी बात नहीं बोले। तो अभी शंकराचार्य जी का है, मूल चीज कहाँ की है? और वो क्षण कौन सी है? जब भी किसी भी जीव की परिणाम की ट्रैक बदल जाती है, परिणाम की दिशा बदल जाती है, वो किसी एक क्षण से ही बदलती है। बदलती है कब से? कि कभी एक क्षण से ही बदलती है। वही धन्य क्षण है कि जिस क्षण से जीव की परिणाम की दिशा संसार की दिशा को छोड़ करके परमार्थ की दिशा में चालू हो गया, बस आगे जाके वो तिर जाएगा। तो ऐसे एक क्षण जो होती है वो कोई सत्पुरुष के प्रत्यक्ष समागम से होती है। ये बात इसलिए लिखा, ये सुभाग भाई का पहला या दूसरा ही पत्र है, पहला ही पत्र है, पहला पत्र है, सबसे पहला पत्र ये है। तो उनको भी समागम हुआ और उनके जीवन की दिशा बदल गई। तो ये प्रसंग के अनुरूप ये श्लोक का अवतरण किया है, प्रसंग के अनुरूप बात लिखी है वो। ऐसा है, दंत कथाएं तो बहुत चलती हैं। ऐसे कोई धर्म के जो मुख्य होते हैं वो ऐसा काम नहीं करते, इनके अनुयायी लोग जो होते हैं वो भूल करते हैं। बहुभाग क्या होता है, ऐसे जो धर्म का मुख्य लोग होता है वो ऐसा काम नहीं कराते, पर कराते तो लोगों को श्रद्धा भी नहीं रहती। कॉमन सेंस में, आउट ऑफ कॉमन सेंस है ये बात। दंत कथा में कहीं भी बातें आ सकती हैं। फिर क्या होता है कि कट्टरवादी भी कुछ लोग होते हैं, हर संप्रदाय में कुछ न कुछ लोग कट्टरवादी होते हैं। वो तो कट्टरता के कारण जब उन लोगों का जोर बढ़ जाता है तब ये तूफान चलता है। वो एक आदमी का काम नहीं है, कोई मंदिर तोड़ना, कोई ये करना, वो करना, कोई तूफान मचाना, ये कोई एक आदमी का काम नहीं होता है। ये तो मॉबिज्म का ही काम होता है। जब मॉब होता है तब ये काम होता है। कोई ऐसा बनता है कि बड़े लोगों के संप्रदाय में भी कुछ ऐसे ऐसे लोग कभी शामिल हो जाते हैं, तूफान भी मचाते हैं और कई बात ऐसी हो जाती है। मुख्य जो एक संप्रदाय का मुख्य चलाने वाला होता है वो ऐसा नहीं होता है। लोग जिसके पीछे चलते हैं वो तो कुछ न कुछ सद्गुण देखने पर ही चलते हैं, ऐसे नहीं चलते हैं। कुछ तो उसके में कुछ दम होता है, वो बात है उसमें। तो इतिहास में तो विकृति बहुत आती है, हुआ भी है ऐसा, लेकिन कब किसने किया वो एक ऐतिहासिक विषय हो जाता है। अपने को तो तत्व से मतलब है कि तत्व जहां ही रहा है, क्या है ऋषभदेव भगवान की जो माणी खीरी, कहीं लोगों ने जो बात जची वो पकड़ ली, तो जो जची वो पकड़ी वो बात तो मूल तीर्थंकर देव की है। साथ में जो विकृतियां हुई वो विकृतियां अंगीकार करने योग्य नहीं है, लेकिन साथ साथ मूल बात भी अंगीकार करने योग्य नहीं है। अगर ऐसा किया जाए तो ये संकुचित मनोवृत्ति का परिणाम हो जाएगा। विशालता वाले को ऐसा नहीं होता है, विशाल बुद्धि वाले को ऐसा नहीं होता है। जो तत्व है वो तत्व की खुद की विशालता बहुत है। क्या है? तत्व की खुद की विशालता ही बहुत है। जैसे एक आत्मा तत्व है, कितनी विशालता है इसकी कि आप सभी आत्मा ही हैं जगत में। तो तत्व दृष्टि वाला तो द्रव्य दृष्टि से देखेगा, कितनी विशालता होगी देखिए। कोई मत, कोई संप्रदाय, कोई बात रही क्या? अरे भव्य अभव्य की बात नहीं रही उसमें तो। और तीर्थंकर भी कौन होते हैं, यानी तीर्थंकर प्रकृति किसको बंधती है कि जिसको सबसे ज्यादा विशालता होती है उसको। इनकी भावना वही होती है कि जगत के सभी जीव इस जिन शासन की छाया में आ जाओ। जिन शासन की छाया मतलब कि आत्म शांति को प्राप्त करें। सभी आत्माओं में शांति का भंडार तो है ही। अज्ञान से, भूल से दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, क्लेश को प्राप्त हो रहे हैं, वो अज्ञान मिट जाए और सभी को ये ज्ञान की विद्या प्राप्त हो, सही ज्ञान की, और सबको सुख शांति मिले, इसमें वो किसी को भी, एक जीव को भी बाध नहीं करते। हाँ, हम फर्स्ट टाइम गए सोनगढ़ तो हमारा परिचय दिया, और शांति भाई जी उसके साथ हम गए थे, उसने हमारा परिचय दिया कि भाई कौन है ऐसा बोले, पूछे गुरुदेव ने, तो बोले कि मेरे साथ आए हैं, भावनगर से आए हैं, वैष्णव है और जैन दर्शन में रुचि अच्छी है, ऐसा करके संक्षिप्त परिचय दिया था। तो गुरुदेव ने ऐसा बोला कि यहाँ तो कोई जैन भी नहीं और कोई वैष्णव भी नहीं। क्या बोले? हमारे यहाँ तो कोई जैन भी नहीं और वैष्णव भी नहीं, हमारे यहाँ तो सब आत्मा ही आत्मा है। सबसे पहले वो बात बोले थे। हमारे निमित्त से जो वचन निकले वो तो ऐसे ही निकले थे। ये विशालता होती ही है और हमारा इतिहास भी वही बोलता है। भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में बहुत से जैनी थे, बहुबार तो जैनी ही थे समझो मनुष्य में। चिरिंज की बात छोड़ो, देवों की बात छोड़ो, वहां संप्रदाय होता नहीं, लेकिन जो मनुष्य आए थे उसमें सब जैनी जैनी थे, सब बहुभाग। फिर भी गणधर पद एक भी जैन को नहीं मिला। क्या वो क्यू में नहीं खड़े थे क्या? गणधर पद वैष्णव हिंदू संप्रदाय में से जो इंद्रभूति मुनि थे वो उसका नाम गौतम स्वामी बाद में हुआ, उसको गणधर पद मिला। गणधर पद मैंने तीर्थंकर भगवान के सबसे प्रमुख शिष्य, मुख्य में मुख्य शिष्य कौन हुआ? कोई जैन कुल में पैदा नहीं हुए थे। मतलब क्या हुआ कि यहाँ कोई संप्रदाय बुद्धि की बात है ही नहीं, और संप्रदाय बुद्धि ही पुण्य को भी छोड़ करके पाप के परिणाम कराती है, वो मालूम नहीं लोगों को, वो समझते नहीं, इसलिए संप्रदाय बुद्धि में चलते हैं। ये विशाल बुद्धि से विरुद्धता है। विशाल बुद्धि में तो सब आत्मा ही नजर आते हैं और गुण की प्रधानता है। सारा जैन दर्शन गुण दोष पर, सारी बात चली है जैन दर्शन की, किसके पर चली है? गुण दोष पर चली है, और गुण की ही प्रधानता है। कोई भी व्यक्ति हो इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। समय के हिसाब से भी सीनियोरिटी नहीं होती। तो ये पुराने मुमुक्षु हैं इसलिए उसको पहला चांस दिया जाए, तो बात नहीं है। गुणवान कौन है? भले पीछे से आया हो, भले नया हो। विशालता में तो बहुत बहुत बातें हैं। इतनी विशालता है कि गणधर देव नमस्कार मंत्र बोलते हैं उसमें नमो लोये सब साहुणम, तो उनके जो शिष्य होते हैं उनका नमस्कार हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? गुरु शिष्य को नमस्कार करे वो विशालता कितनी है। और ज्ञानी भी भक्तिमान की भक्ति करते हैं। सुभाग भाई का कितना आदर किया है, 453 पत्र निकालो। चार सौ तिरपन है। आखिरी वचन है, क्या लिखें और क्या कहें, एक आत्मवार्ता में ही अविच्छिन्न काल रहे, ऐसे आप जैसे पुरुष के सत्संग के हम दास हैं। सुभग भाई को क्या दिखते हैं कि आपको तो आत्मवार्ता बहुत रुचती है और आत्मवार्ता ही चलती है हमारे बीच में, तो ऐसा सत्संग हम तो दास बनकर के भी चाहते हैं। क्या दास बनकर के भी हम ऐसा सत्संग चाहेंगे? अत्यंत नम्रता से हमारा चरण के प्रति, आपके चरण के प्रति हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए, यही विनंती है। चरण में नमस्कार किया है, इसको कहते हैं विशालता, इसको कहते हैं नम्रता। जहाँ विशालता होती है वहाँ मध्यस्थता, सरलता, नम्रता आदि गुण आए बिना रहता नहीं। ऐसा कभी नहीं सोचा कि हम गुरु है और वो हमारे शिष्य हैं। जैन दर्शन में जितने भी गुरु हुए हैं, यथार्थ गुरु हुए हैं, सम्यक गुरु हुए हैं, वो कभी अपने को गुरु पद में मानते ही नहीं। एक इसकी विलक्षणता है और विशेषता है कि वो अपने को गुरु पद में नहीं मानते। शिष्य अपनी जगह से उनको गुरु पद में बिठा देते हैं, लेकिन अपने ओर से वो अपने को गुरु पद में कभी नहीं मानते। मैं गुरु कहाँ का? गुरु शिष्य का भेद हमें नहीं चाहिए। ये विशालता होती है, पर ये विशालता होती है तब तो वे गुरु है। अगर ऐसी विशालता नहीं होती तो वे गुरु भी नहीं है। और गुरु बनके, गुरु के अहम भाव में जो बैठते हैं वो वास्तव में गुरु नहीं है, वो लघु है। गुरु तो नहीं है, वही उसकी लघुता है, गुरुता है ही नहीं। गुरुता तो इसमें है कि गुरु होने के बावजूद भी गुरु का अहंकार नहीं करे। सबों की यही हालत है, गुरुदेव श्री का भी यही हालत है। बेंसर की कितनी प्रशंसा करते थे, अपने शिष्य के वचन पर प्रवचन दिए, पेंसरे के वचना पर प्रवचन दिए और सोगाने जी को नमस्कार किए। सब बातें प्रसिद्ध हैं। ये क्या सूचित करती है, ये सब बातें क्या सूचित करती है कि इनकी विशालता कितनी थी? अरे वो तो हमारे से ज्ञान प्राप्त किया, इनके वचन पर हमको क्या बोलना है, ऐसा लेते क्या? वो ग्रंथ पढ़ कर के गुरुदेव को उतना उल्लास आया है, उल्लास आया है। 1,00,000 नकल छपा उसके, क्या बोले? साथ साथ वही बोले कि हम कभी कोई शास्त्र छपाने के विषय में पढ़ते नहीं हैं, बोलते भी नहीं हैं। क्यों? कि विषय रहा ट्रस्टियों का, माने एडमिनिस्ट्रेशन वालों का, पर खुद तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन करते नहीं थे, चलाते नहीं थे, ट्रस्ट में माथा लगाते नहीं थे। फिर भी बोला कि हम किसी ग्रंथ के लिए नहीं बोले, लेकिन इस ग्रंथ के लिए भाव आ गए तो बाहर भी बोल दिया, भाव आए तो छिपाया नहीं। के लिए वो बात थी कि मुमुक्षु के योग्य बहुत सी बातें इस ग्रंथ में आई है और मुमुक्षु समाज पर इसका बहुत बड़ा उपकार हो सकता है, इसलिए मुमुक्षुओं की भलाई के लिए वो बोले थे। अपना कुछ उसमें बात नहीं था, तो इस तरह से उन्होंने वो भी बात किया और प्रवचन भी दिए। ये सब विशालता के कारण से है। यहाँ से शुरू हुई थी। अपन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, गुरुदेव भावनगर पधारे थे विहार करते करते, टाउन हॉल में प्रवचन चलते थे भावनगर के मोतीबाग में, और हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि बहन श्री के वचनामत पर प्रवचन कीजिए, तो सौरभ चालू कर दिया, बहुत उत्साह से किया, उमंग से किया था, रस बहुत रस आता था गुरुदेव का। और जिन जिन्होंने लिखा उसमें परिश्रम किया उसको लिए ट्रस्ट की ओर से, भावनगर ट्रस्ट की ओर से दिया था, आपकी ओर से दिया था, सबको दिया था, सबको चांदी के गिलास वो सब दिया था, खुशी के मौके पर ये सब किया था। तो ये विशालता कितनी होती है, गुरुदेव के विरोध करने वाले विशालता में बहुत से पहलू हैं। विरोध करने वाले कभी गुरुदेव के पास आते थे, गालियां देने वाले थोड़ा विरोध नहीं करते, गुरुदेव ने कभी विरोधी की नजर से देखा ही नहीं था, देखते नहीं थे, इधर आया बहुत बात हो गई, इधर आने का उसका भाव हुआ यही बहुत बड़ी बात है इनके लिए। पर कुछ लोग माफी मांग लेते थे, क्षमा मांगते थे, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं ऐसे कर देते, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ, भूल जाओ सब भूल जाओ, हैं हम तो किसी के पर्याय को नहीं देखते। ये विशालता में उदारता होती है, क्या विशालता में इसी उदारता होती है। लौकिक में ऐसा है, लौकिक में ऐसा होता है, भावनगर का वही इतिहास है, भाव सिंह जी का जमाने का, जोगीदास कुमार भावनगर के राजा के साइनस के सामने बारवटे में थे, उनके पिताजी तखत सिंह जी गुजर गए, भाव सिंह जी के पिताजी का अवसान हो गया, वो इतना खेल दिल आदमी था, उदार आदमी था, वो आया इसके घर पे, उसने देखा कि बहुत करके क्या करेंगे, मुझे अरेस्ट कर लेंगे ना, सजा देंगे और क्या करेंगे, लेकिन इनका पिताजी मर गया है, मुझे जाना चाहिए, थोड़ा वेश पलटा किया, वो बुकानी बुकानी बांधे, माथे ओढ़ लिया, ऐसा कर लिया, और सबको उनके यहाँ तो 100-200 आदमी 500 आदमी आते हैं ऐसे प्रसंग में, सैकड़ों लोग आते हैं ना, वो भी बीच में घुस गए, सब रोते हैं, वो भी कृत्रिमता से रोते हैं ना, वो भी रोने लगे, तो महाराजा खुद सबको शांत करते हैं, शांत रहिए शांत रहिए शांत रहिए शांत रहिए। घूमते घूमते इसके पास आए, पहचान लिया ये तो बारवटिया है, गांव भांगता था जोगीदास खुमान भावनगर ना, गामड़ा भांगता था, खून खराबा करता था, लूट लूट खून खराबा बदू, जोई लियो कहता हूँ मारा दुश्मन है, यहाँ घरे आवी गयो छे, मारा घर में मारो दुश्मन है, अवाज ऊपर छोड़ के जा, खमा जोगीदास खमा खमा नाम लेने ने कीधु, लेकिन मैं तेने ओळखी लीधो छे, एनु नाम लेने कीधु, खमा खमा शांत जोगीदास शांत था शांत, क्या तो बधाय तरवार ने बंदूक, पुलिस लोग खड़ा था, करे राजमहल का प्रांगण में सब बैठे थे, पुलिस हथियारधारी सब खड़े थे, सब तैयार हो गए पकड़ने के लिए, ऑर्डर दे दिया, लौकिक उदारता क्या होती है, कोई नहीं पकड़ेगा उसको, जाने दीजिए उसको, जहां जाना है जाने दीजिए, इस वक्त कोई इसको पकड़ेगा नहीं, छोड़ दी, देखो ये उदारता लौकिक शब्द में होती है, ये तो पारलौकिक बात है, अलौकिक बात है, हैं? हाँ? वो सुगानी जी का एक चिट्ठी है 33 नंबर का, उसमें लिया है कि अज्ञानी अपने वर्तमान में त्रिकाली को भुला हुआ है, त्रिकाली को भूल जाने से उनके परिणाम हैं वो मर्यादा बाहर चल जाते हैं, ज्ञानी को इसका ज्ञान रहता है और कुछ नहीं, ऐसा क्यों वो असमाधान उसको नहीं रहता, बस खत्म, बात खत्म हो गई, जान लेते हैं वो। ऐसी विशाल बुद्धि तत्व पाने के लिए बहुत अच्छा उत्तम पात्र है। वो विशाल बुद्धि के कारण से मध्यस्थता आती है। मध्यस्थता माने क्या? निष्पक्षपातता, स्वयं के बारे में और दूसरों के बारे में कहीं भी रागवश, मोहवश या द्वेष के वश कहीं भी पक्षपात नहीं होना, उसको कहते हैं मध्यस्थता। दूसरी भाषा में वो बात है कि जो बात जैसी है वैसी ही ज्ञान में दिखना, हीनाधिक रूप नहीं दिखना उसमें, न हीन दिखना न अधिक दिखना, क्योंकि वो तो विकृत ज्ञान में ऐसा होता है। पर मुमुक्षु की भूमिका में एनी शुरुआत था इसे अहिया एम कहूं था। लौकिक में भी रेशनल थिंकिंग करवा वाला मानसो हो, बहु रेशनल थिंकिंग हो एवं मानसो जोया छे। अत्यारे एम कहवाय छे कि डॉक्टर लोको धंधादारी थी गया छे, दर्दीनु हित जोता नथी, पोतानु हित जोवे छे। हमको जो आर्टरी ब्लॉकेज आया बम्बई में, कहीं डॉक्टरों को हम कंसल्ट करते थे, उसमें एक पालनपुर के अपने जैन थे, बॉम्बे में सेंट्रल बैंक बिल्डिंग में बैठते हुए, बहुत रेशनल थिंकिंग वाला आदमी था। हमको बोले, चेक किया, एग्जामिन किया, बोले कि आपको 6 महीना कुछ कराने की जरूरत नहीं है, बाईपास में भी नहीं जाना, एंजियोप्लास्टी में भी नहीं जाना, कुछ नहीं करना, आपका हेल्थ बिल्कुल ठीक है। हमको एक बुला, एक अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट का एक अच्छा किताब है, ये किताब आपको मिल जाएगा मुंबई में से, आप पढ़ लीजिए। हम बोले कि वो डॉक्टर ऐसा कहते हैं, वो डॉक्टर ऐसा कहते हैं, तो उसने ज़्यादा नहीं बोला, हमारे डॉक्टर लोग आजकल प्रोफेशनल साइड से विचार करके एडवाइस करते हैं, हम ऐसा नहीं करते। बहुत मध्यस्थ होकर के बात करते हैं। सज्जन लोग में भी ऐसा होता है। तो ये तो तत्व पाने की बात है, आत्म तत्व पाने, जो आत्म तत्व बहुत विशाल है, खुद आत्मा ही खुद बहुत विशाल है। इसका केवल ज्ञान देखो, इसके सद्गुणों देख, सद्गुण देखो तो अनंत है, अंदर में कितने हैं, अनंत दिव्य गुणों का भंडार है अंदर में, ऐसा आत्मा है। हम ऐसा आत्मा है तो प्रत्येक आत्मा ऐसा है, क्या है, प्रत्येक आत्मा ऐसा है, कितनी विशालता आती है उसमें। वो तत्व पाना है, उसका अनुभव करना है, पाना है मतलब जिसको अनुभव करना है उसको मध्यस्थता विशालता आएगी आएगी और आएगी। क्योंकि जो पक्ष से विचार करते हैं, कभी पक्ष करके विचार करते हैं, रॉन्ग जजमेंट आता है उसका, राइट जजमेंट कभी नहीं आएगा उसका। जो मध्यस्थ है वही वस्तु जैसी है या घटना जैसी है उसको सही रूप में देख पाएगा, दूसरा नहीं देख पाएगा। मुमुक्षुता के प्रारंभ में वैचारिक भूमिका होती है और वैचारिक भूमिका में एक ऐसा विचार आता है कि हमको यथार्थ ज्ञान करना है, यथार्थ समझ करनी है, हमको यथार्थ कुछ नहीं करना है, और वो यथार्थता तब ही हो सकती है कि जब हमारी वैचारिक स्थिति मध्यस्थ होवे तब। अगर हम मध्यस्थ नहीं रहे, मध्यस्थता को जो खो बैठते हैं उसका जजमेंट रॉन्ग जाता है, उसका जजमेंट राइट नहीं निकल सकता है। तो जिसको यथार्थता चाहिए, जो यथार्थता सम्यक का प्रीस्टेज है, यथार्थता ही विकसित होकर के उसका डेवलपमेंट होकर के सम्यकता में परिणमित होती है। तो जिसको यथार्थता चाहिए उसको मध्यस्थता पहले आएगी। हम सत्संग में ये चर्चा क्यों करते हैं कि किसी व्यक्ति के प्रति शल्य नहीं रखो। कोई भी घटना घटी हो, एक भी व्यक्ति पे शल्य रहता है वहां तक पुरुषार्थ उठता नहीं, अंतर में पुरुषार्थ नहीं चलता, पुरुषार्थ का अवरोधक कारण है जो समझ में नहीं आता लोगों को। तो वो जो शल्य है, निशल्य व्रति, शल्य वाले को तो व्रत ही नहीं हो सकता। तो वो तीन प्रकार के शल्य है, उसमें एक शल्य है मिथ्यात का शल्य है, वो आत्मा को नहीं मानते, सिर्फ पर्याय को ही मानने वाला है, पर्याय को ध्रुव मान लिया तभी शल्य होता है। तो शल्य के कारण से क्या होता है कि मध्यस्थता नहीं रहती है, मध्यस्थता चली जाती है, मध्यस्थता नहीं होती। तो अवगुण मिटकर सद्गुण आएगा वो दिखने में नहीं आएगा, क्यों? वो तो पकड़ के बैठा है, वो तो ऐसा ही है वैसा ही है, ऐसा होना वो हमारे अहित का कारण होता है, ऐसा होना वो हमारे ही अहित का कारण होता है। ये विशालता में और मध्यस्थता में ये सब बातें बहुत हैं जी। मध्यस्थता वही सही विवेक है, मध्यस्थता खोना वही अविवेक है। कोई भी बात हो मध्यस्थता के टेबल पर रख दो, खींचा ताने किए बिना देख लो सही परिस्थिति क्या है, दोष को दोष समझो, गुण को गुण समझो, बात को सही रूप में देखना पड़ेगा। तो उस तरह से जो मध्यस्थता है वो भी तत्व पाने के लिए एक उत्तम गुण है। सरलता तो सबसे बड़ा गुण है, सरलता तो सबसे बड़ा गुण है। सरलता होना मैंने वक्रता नहीं होना, ऐ सरलता नहीं होना, हठ नहीं होना, जिद नहीं होना, माया नहीं होना, कपट नहीं होना। वो नास्ति से सभी परिणामों की नास्ति है जिसमें, वही सरलता है। करीब करीब तो कोऑर्डिनेशन है, एक होता है तो दूसरा होता है तो तीसरा होता है, आनुषंगिक परिणाम है ये सब। कैसे हैं? आनुषंगिक परिणाम है ये। तो तत्वार सूत्र में हमारे उमा स्वामी महाराज ने मनुष्य गति का कारण सरल परिणाम दिए हैं। कौन जीव किस गति में किस कारण से जाता है, या कैसे परिणाम से कैसी गति मिलती है, ऐ सरल और माया के परिणाम से तिर्यंच गति मिलती है, तो सरलता के परिणाम से मनुष्य गति मिलती है। माया के परिणाम मैंने आड़े परिणाम, કેસે સમજ કે બહુ આડોડાઈ કરે છે, આ એ સરળતા વિરુદ્ધ છે, આડોડાઈ છે એ સરળતા વિરુદ્ધ છે. તો જિસકે પરિણામ આડે હોતે હૈ ઉસકે શરીર ભી આડે હો જાતે હૈ. દેખો કુદરત કી વ્યવસ્થા, પરિણામ બહુત આડે કિયે ઇસકે ફલ મેં શરીર ભી આડે મિલેગી. એક ભી ત્રી ઇંચ કો સીધા શરીર નહીં મિલતા, મનુષ્ય સીધા ખડા હૈ ઓર ત્રી ઇંચ સે આડે હૈ જીતને ભી હૈ, હૈ કે નહીં. और चार गति में परमार्थ मार्ग को ग्रहण करने में अच्छी से अच्छी योग्यता होती है तो मनुष्य प्राणी को होती है चारों गति में, क्योंकि वो सरलता से मनुष्य हुआ है इसलिए. तो उसका जो वैचारिक परिस्थिति है वो अच्छी है. हित अहित के विषय में देव नारकी और त्रियंश तीनों गति के बराबरी में मनुष्य का थिंकिंग आत्मकल्याण के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो सरल परिणाम से मनुष्य हुआ. उसमें भी जो पुरुष होते हैं और सरल होते हैं. मनुष्य में दो जाति है, स्त्री और पुरुष. तो मायाचार थोड़ा अधिक होता है, सरलता के साथ साथ भी मायाचार का मिश्रण हो जाता है, तब तो स्त्री पर्याय को प्राप्त होता है जी. और तो पुरुष अधिक सरल है. ऐसी सरलता में होने वाले मनुष्य को यदि और सरलता बढ़ जाए तो सरलता के कारण से वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकता है. क्यों? कि शुद्धोपयोग है वो सबसे अधिक से अधिक सरल उपयोग है. शुद्धोपयोग है ना, जो स्वानुभूति वाला उपयोग है वो सबसे अधिक सरल उपयोग है. कैसे? कि इस उपयोग को बाजू में बगल में ही राग का एक प्रवाह चल रहा था, चारित्र गुण में बहुत समीप में था. उपयोग टेढ़ा होता था तो उसका संग कर लेता था वो. इसकी असरलता थी, टेढ़ापन था, यू माकापण हो तो अडोड़ाई थी. अगर उपयोग सरल हो गया, स्वरूप में चला गया, सीधा होकर के ये पारमार्थिक सरलता की चरम सीमा है, आखिरी सीमा वो है. तो जितनी सरलता रहे उतनी अच्छी ही है. संसार में बात और चलती है हमारे यहाँ, सीधी आंगली ये घी नो निकले हैं ने आडे लाकड़े आडो वेर. तमे आडा चालो तुम्हारे आडू चालवानो, हूँ हमें सीधो नहीं चालो, तमे के माम चाइला माटे हूँ हमें आडो आली. हाँ, वो बात संसार में परिभ्रमण करने की है. किसी को भय लगता है कि अगर तुम बहुत सरल हो जाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, लोग हमारे सरलता का नाचाइज फायदा उठाएंगे. कैसा फायदा उठाएंगे? आवाज दीजिए जरा, आवाज दीजिए. लोग हमारी सरलता का गैर फायदा उठाएंगे और हमको नुकसान हो जाएगा, इसलिए कहीं तो असरलता करनी चाहिए. वो बात हमारे सिद्धांत में नहीं है, हो जाए वो अलग बात है, लेकिन वो बात हमारे सिद्धांत में नहीं है. कोई फायदा किसी ने गैर फायदा उठाया मानो या नुकसान हुआ मानो, तो
तो ये हमारे पूर्व कर्म के उदय से हुआ है, हमारे सरलता के कारण से नहीं हुआ है। किससे हुआ है? हमारे पूर्व कर्म के उदय से, माने हमारे पूर्व के अपराध के कारण से हुआ है, और वो जरूरी था। अपराध की शिक्षा मिलना, दंड मिलना, वो तो जरूरी है, आवश्यक भी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो खाता कैसे साफ होगा? कर्ज तो किया है, देंगे नहीं तो खाता तो खड़ा रहेगा, देनदारी चालू रहेगी, मुख में जाएंगे कैसे? इसलिए कोई प्रतिकूलता का आना, उसमें कोई भय का कारण, ना हिम्मत होने का कारण होने ही नहीं चाहिए। सरलता से चलना, और सरलता से चलने में कुछ भी हो इसमें कोई आपत्ति नहीं गिननी चाहिए। इसका फल बहुत बड़ा है, सरलता का फल बहुत बड़ा है, तो मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकता है। सरलता वाला जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकता है, इसलिए अपने सरलता पर तो एक आर्टिकल लिखा है, अपने जो 21 आर्टिकल है तत्वानुशील में, एक आर्टिकल सरलता पे है, क्योंकि ये बहुत से दोषों को रोक लेता है। सरलता के कारण से बहुत से दोष अपने आप उत्पन्न ही नहीं होते, और कुछ एक गुण अपने आप उत्पन्न होने लग जाते हैं। दोनों साइड का फायदा है उसमें, सरलता से वो सब बात उसमें लिया है। सरलता पर तो एक सरलता ऐसी गुण है कि घंटा उस पर चला जाए, ऐसी बात है। सबसे पहले ग्वालियर में लिया था सरलता वाला आर्टिकल, पर पर्यूषण के दिनों में ही गए थे ग्वालियर में। हैं, हाँ, तो एक घंटा चल गया था उसके पर, तो फिर वही तत्वानुशीलन भी लेना पड़ेगा, तभी तो सब 20-20 पॉइंट तो याद रखने का बोझ तो उठा नहीं सकते ना। जब उस वक्त उपयोग चल गया तो चल गया, और लिख दिया तो लिख दिया, फिर स्मरण में रखने का तो बोझा नहीं होता। वो तो ठीक है, सही बात, वो बात ठीक है। जो हमको आत्मकल्याण में ले जाए वो सरल है, सरल भाव से ही आत्मकल्याण होता है, और उससे दूर ले जाए वो असरल परिणाम है। उसमें असरलता कहीं न कहीं है ही, तो वो ठीक है, वो जनरलाइज कर सकते हैं उसको इस तरह से। और जितेंद्रियता, जितेंद्रियता मैंने क्या है, पंचेंद्रिय के किसी एक या अधिक विषय में सुख बुद्धि के कारण से जो आसक्ति के परिणाम रहते हैं, वो सुख बुद्धि को पहला तोड़ना चाहिए। सुख बुद्धि को सबसे पहले तोड़ना चाहिए, फिर आसक्ति का जाना बहुत मामूली बात है। इसके पहले दबाना पड़ेगा, परिणाम को दबाना पड़ेगा, दबाने से तो कोई लाभ होने वाला है ही नहीं। जैसे कोई त्याग कर देते हैं या दूर चले जाते हैं, तो दूर भागने से या त्यागने से वो काम नहीं होता। सुख बुद्धि है, अनुकूलता में सुख बुद्धि, वो पांचों इंद्रियों के विषय में की सुख बुद्धि है, और किसी एक विषय में या एक से अधिक ज़्यादा 2-3-4-5 सुख बुद्धि है, वो सुख बुद्धि कभी कितनी भी पनप सकती है, उसमें जितेंद्रियता का सवाल नहीं रहता। इसलिए ज्ञानी के मार्ग में शुरू से ही रस तोड़ने का प्रयोग है, और इस प्रयोग के दौरान सुख बुद्धि टूट सकती है, तोड़ सकते हैं, वो अभिप्राय की भूल है, और अभिप्राय की भूल पहले छूटनी चाहिए। ऐसे गुण जिस आत्मा में हो वह तत्व पाने के लिए उत्तम पात्र है, वह तत्व पाने के लिए उत्तम पात्र है, उनको तत्व पाने की जगह हो गई है, अवकाश हो गई है, वो अवश्य तत्व को प्राप्त कर सकता है, मैंने आत्म का साक्षात्कार कर सकता है। यहाँ तक रखें, फिर कर लेंगे आगे का विषय।